ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
போலிய சச்சிதானந்த பகவான் கி ஹரி யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்தந்தி திவ்யேஸ்தவே வேதைஷாங்க பத க்ரமோபநிஷதே காயந்தி யமசாமகா த்யானாவஸ்தி தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஷாந்தன் விதூ சுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நம இவாய தஸ்மே நம. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரி பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்யை வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நம வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நம. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண பஜ்மன்நாராயண நாராயண நாராயண பஜ்மன்நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண ஸ்ரீமந்த ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண பஜ்மன்நாராயண நாராயண நாராயண பஜ்மன்நாராயண நாராயண சப் ஜக நாராயண 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 சப் ஜக நாராயண நாராயண ஜல்தல் நாராயண 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 ஜல்தல் நாராயண பஜ்மன்நாராயண நாராயண நாராயண பஜ்மன்நாராயண. போலிய சச்சிதானந்த பகவான் கி. ஈஷாவாஸ்ய உபநிஷத் கே सातवें मंत्र के द्वारा कल हम लोग विचार कर रहे थे. भगवती श्रुति ब्रह्म ज्ञानी की तत्ववेता की महिमा बताती हैं. यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मनेवाभूत जानतः तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यते. जिस काल में जिस समय ज्ञानी पुरुष सर्वभूत रूप आत्मा को देखता है, आत्मा में ही सर्वभूत रूप होगा, ऐसा एकत्व दर्शन करने वाला तत्ववेता जो आत्मा में सर्वभूत को जानता है देखता है और सर्वभूत रूप आत्मा जो देखने वाला होगा वह तत्ववेता तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तत्र को मोह को शोका उसके लिए कहां तो मोह, कहां शोक की बात रह जाती है। शोक मोह माने संसार इससे अलग हो गया। शोक मोह से अभिप्राय है संसार से अलग हो जाना, संसार ज्ञानी के लिए नहीं रह जाता है। संसार तभी तक है, तभी तक मोह है, मैं और मेरा तब तक है, शोक भी तभी तक है। बोले कब तक? जब तक कि हमारे लिए ये सर्वभूत सब में एक आत्मा का दर्शन नहीं होता। एक आत्म दर्शन प्राप्त करना ही इस मंत्र के माध्यम से भगवती श्रुति हमें ये स्पष्ट करना चाहती है कि मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि भगवान ने हमें जो ये मनुष्य शरीर दिया है, कबहू की करुणा निधि करुणा कर देही, उन्होंने कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, शरीर रूपी साधन उपलब्ध करा दिया, और इस शरीर रूपी साधन को प्राप्त करके इस साधन से जो हमें प्राप्त करना है, बोले वो क्या प्राप्त कर, ये एक शरीर ही माध्यम हो सकता है, ये शरीर ही साधन हो सकता है जिस साधन को लेकर के हमारी दृष्टि हमारी स्थिति उस आत्मा में बन सके, आत्मस्थित हो सके, तत्व स्थित हो सके, तत्व में हमारी स्थिरता बन जाए। और तत्व में स्थिरता बनने के बाद यह जो शरीर है, जिस शरीर से हमारा संसार से संबंध है, उस शरीर का महत्व फिर नहीं रह जाता। उससे जो हमें प्राप्त, जब तक ये शरीर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बोले कब तक महत्वपूर्ण है? जब तक हमारी वो तत्व में दृष्टि नहीं बनती। और तत्व दृष्टि बनने के लिए भगवान पंजाब के संत हुए हैं गुरु नानक देव, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि उस तत्ववेता को, ब्रह्मवेता को, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे परमेश्वर, परमात्मा भी यदि खोजते हैं तो बोले किसे खोजते हैं? परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसे स्वयं परमात्मा प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप महेश्वर, वो स्वयं ही वो वही है, ऐसा तत्ववेता। उसके लिए संसार से वो अलग हो गया, संसार फिर नहीं रह गया, शोक और मोह नहीं रह गया, कहने का अभिप्राय संसार से अलग हो गया। अविद्या रूप ये जो संजगत है उसकी निवृत्ति हो गई और स्वस्वरूप में स्थिति बन गई। अगले मंत्र के द्वारा, आठवें मंत्र के द्वारा कहा, शपर्यागाच्छु क्रमाय शुक्र अभ्रोण स्मन शुद्धम पापम विद्धम कवि मनीषम परिभू स्वयंभू ततोत्थानम व्यवधान शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात वह आत्मा सर्वगत माने आत्मा सर्वव्यापी है। इस मंत्र को भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने इस मंत्र का जो अर्थ किया, बहुत लोग सर्वगुण निर्गुण साकार निराकार लिंग पुलिंग को लेकर के चर्चा करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने वैष्णवों की व्याख्या में और आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की व्याख्या में दोनों में अंतर है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने इस मंत्र का जो अर्थ किया वह इस प्रकार है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता किसी लिंग से, पुलिंग से लेकर नहीं, लक्षण से लेकर, यद्यपि परमात्मा लक्षणातीत है, परंतु ये लक्षण जो बताए वो किसी लिंग से नहीं है, वो न पुलिंग लक्षण से है, और यह लक्षण ऐसा ही है जैसे कह दिया जाए कि चंद्रमा पेड़ से दो अंगुल ऊपर है। एक लक्षण ये है और एक लक्षण वो लक्षण है जिस लक्षण को हम किसी घट पट आदि के द्वारा समझाते हैं, विश्लेषण को लेकर के समझाते हैं। यहां भगवान शंकराचार्य ये कोई विश्लेषण बता करके नहीं, लक्षणातीत होते हुए भी एक लक्ष्य कह बता रहे हैं कि वह सर्वगत है, शुद्ध है, वह सर्वव्यापी। सपरिया गाचु शुक्रमाय, अर्थात वह सर्वव्यापी है और शुक्रमाय माने अत्यंत ज्योतिर्मय है, अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है, अक्षत है जिसकी जिसका कभी क्षय नहीं है, अस्नायु से रहित है, निर्मल है और सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है, सर्वोकृष्ट है, स्वयंभू है। और भगवान स्वयंभू, वो स्वयंभू है और वो नित्य सिद्ध संवत्सरादि जो प्रजापति नाम के नाम है, यथा योग्य रीति से उनका विभाग किया गया है। अर्थात सर्वव्यापी वह कहां नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है, वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, आकाश के समान एकत्व मनोवचम। जैसे आकाश सर्वत्र एक शरीर का समान दिखाई पड़ता है, ऐसे ही वह व्यापक जो सब में सब समय में स्थित है, ऐसा जो व्यापक और ज्योति सुप्रम माने अत्यंत विशुद्ध ज्योतिर्मय, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मय शिव संकल्प मस्तु, वह विशुद्ध ज्योति जिस प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक, जिससे सब जानने में आ रहे हैं, जिसके बिना कुछ नहीं जाना जा सकता है, ऐसा जो व्यापक है, ज्ञाप्ति जिसे कहते हैं, व्याप्ति ज्ञाप्ति प्राप्ति और मुक्ति, ये चार शब्द आते हैं जिसके लिए कहा व्याप्ति। व्याप्ति से अभिप्राय है सर्वव्यापक। ज्ञाप्ति माने ज्योतिषाम ज्योतिर्मय है, ज्ञानी है, चिद जिसे हम कहेंगे, और व्याप्ति से हम सत कहेंगे, ज्ञाप्ति से हम चित कहेंगे, प्राप्ति से हम जो उसका आनंद स्वरूप है, आनंद का लक्षण है, और मुक्ति जिसने सच्चिद आनंद को जान लिया, वह शरीर आदि के बंधन से, समस्त बंधनों से मुक्त हो गया, प्रपंच से मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया। संसार से तो पहले ही मुक्त है वो, क्योंकि वहां उसमें कोई प्रपंच नहीं है। इसलिए ऐसा भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि वह कवि माने जो क्रांतिदर्शी है, उसकी क्रांति को मनीषी जिसने मन पर नियंत्रण किया है, मनीषा कहते हैं बुद्धिमान को, और मनीषी वो है जिसने अपनी बुद्धि के ऊपर मन के ऊपर नियंत्रण रखा है, उसी का नाम मनीषी है। मन के ऊपर नियंत्रण करने वाला, उसका नाम मनीषी माने बुद्धि, और जो बुद्धिमान अपने मन पर नियंत्रण रखता है ऐसे उसको कहा गया है मनीषी। और वह मनीषी परिभू माने जो सबका परिभूत करने वाला, स्थिति को वस्तु को समझने वाला परिभू, और जो कभी किसी परिस्थिति से बाधित नहीं होता, इसलिए कहा कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। वह स्वयं स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट होने वाला अर्थात तो स्वयं ही है, ऐसा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए यह लक्षण उस आत्म स्वरूप के आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने बताए। इस प्रकार इन लक्षणों के साथ श्रुति के लिए कहा गया है कि हमें भगवान परमात्मा के संबंध में हमारी बुद्धि स्पष्ट, जब तक कई बार मैं ये बात कहती हूँ कि जब तक हमारी बुद्धि में वह परमात्मा सब में है, ये बात एक सामान्य बच्चे को भी आप पूछें तो इतना तो सब जानते हैं कि भगवान सब में, परमात्मा सब में, पर सब में है तो कैसे है? जब तक ये हमारे अंदर स्पष्ट नहीं होगा और उसके साथ हमारी दृढ़ता नहीं बनेगी तब तक अनुभव में नहीं आएगा। परमात्मा को हमें कैसे जानना है? बोले जानना है कि वह सर्वव्यापक है, सब में है, सर्वव्यापक है, और दूसरी बात वह ज्योतिष है, ज्योतिर्मय है, प्रकाश है, इसीलिए कहा विशुद्धम शुक्रमाय। शुक्रमाय का मतलब है शुक्रमाय ज्योति प्रकाश, अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है, माने उसमें अशरीरी से अभिप्राय है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना हुआ अशरीरी से है, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता, वह मन भी नहीं, वह बुद्धि भी नहीं, वह चित भी नहीं, जिसे हम एक एक करके सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो हमें हमारा दिखाई पड़ता है, यह स्थूल शरीर तो पहले ही मंत्र में कहा कि कहां मोह है कहां शोक है, माने स्थूल शरीर की निवृत्ति हो गई, और फिर जो सूक्ष्म शरीर है वह सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा, अशरीरी माने सूक्ष्म शरीर नहीं, 17 तत्वों का बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर भी नहीं। सूक्ष्म शरीर को भी अलग किया, पहली बात परमात्मा की सर्वव्यापकता, दूसरी बात उसके ज्योतिर्मय शुक्र अत्यंत प्रकाशमय, वह ज्योतिर्मय है, अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है। और इतना ही नहीं, वह साक्षात स्नायु रहित अक्षत माने जिसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, नाश तो उसका होगा, क्षय तो उसका होगा जो शरीरी होगा, जो शरीर जो बनता है वो बिगड़ता भी है, इसलिए वहां कोई शरीर नहीं है तो बिगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, अशरीरी है, अक्षत जिसकी कभी क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती, और स्नायु से रहित है माने जिसके अंदर निर्मलता है, विशुद्धम विशुद्ध है, निष्पाप है, जहां कोई पाप से अभिप्राय है, कोई मल नहीं है, वासना नहीं है, अत्यंत विशुद्ध है, ऐसा सर्वज्ञ मन का नियंता, इस जिसने अपने मन पर नियंत्रण किया हो, अर्थात मन को देखने वाला, मन का साक्षी, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि मन बुद्धि से परे ऐसा सर्वोत्कृष्ट स्वयंभू सर्वोत्कृष्ट उसी से संबत्सर नामक प्रजापतियों को यथा योग्य रीति से सबका विभाज सबको विभाग किया, माने ऐसा जो आत्मस्वरूप है उस आत्मस्वरूप में हमारी निष्ठा, हमारा विवेक, हमारा विचार, हमारी वृत्ति, हमारा मन उस परमात्मा के चरणों में लगे और उस पर हमारी स्थिति बने, उसके लिए ही श्रुति हमें हमारे स्वरूप का निरूपण करके बता, हम यह जो लक्षण जो बताए गए हैं ये किसी और के नहीं है, यह हमारे अपने स्वरूप के हैं, अपनी आत्मा के हैं, हम ये हैं, परंतु हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वह तो यही है जो श्रुति बता रही है, परंतु इसे न समझ करके हमने अपने को क्या समझ लिया, बोले अपने को ये समझ लिया जो हम दिख रहे हैं, जो हम दिख रहे हैं वो हम है नहीं है, जो नहीं है जो दिखते हैं उसे हम अपने को मानते हैं, और अपने को मान करके जो हमारा माना हुआ है जो हम हैं उसे हम जानते नहीं है, और जो नहीं है वो हम जो हमने अपने आप को मान रखा है उस मान्यता को पकड़ करके हम इतनी दृढ़ता के साथ उस मान्यता को पकड़े हुए हैं, और जिस मान्यता को मन बुद्धि ने ऐसा दृढ़ करके पकड़ा हुआ है कि उसी के साथ हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, ये सब हमारे अंदर, ये सब किसमें हैं, बोले शरीर को लेकर के, और इन्हीं के साथ जीव सुखी दुखी जन्मने मरने वाला बढ़ने घटने वाला और अपने को समझ रहा है, और इस मान्यता को छोड़ने के लिए जो हमारा ये सब शरीर को लेकर हमने अपने आप में ये माना बस यही मैं हूँ, ये अपने को शरीर मान करके शरीर के सम्मान के साथ बड़ा अपना सम्मान समझते हैं, और शरीर के निरादर के साथ हम अपने आप को बड़ा निरादर मानते हैं कि उसने हमारा तिरस्कार कर दिया, उसने हमारा अपमान कर दिया, हमें तो बड़ा बुरा कह दिया, हमें बड़ा भला कह दिया, अपने आप को भला बुरा हम इस शरीर के तल पर रहकर शरीर को लेकर हम मान रहे हैं। यदि हम श्रुति के इस सिद्धांत को समझ जाएं, ये हमारी समझ में आ जाए, और समझ में कब आएगा, जब बार बार सुनेंगे, और सुनने के साथ जैसे हमारी ये बात दृढ़ अपने भीतर होगी तो हमारा मन शरीर से जो हमारी मान्यता है वो अलग हो जाएगी, छूट जाएगी, और शरीर की मान्यता के छूटने के साथ ही आत्मस्थिति बनेगी, और इस आत्मस्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर सुनते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, और अपने अंदर में बैठ करके एकांत में मनन और चिंतन करते रहिए। मनसस्ता, जब तक मन से मनन नहीं होगा, मन पर नियंत्रण नहीं होगा, ये मन बार बार अपने को पूर्व अभ्यासवत पहले का जो अभ्यास मन का है अपने को शरीर मानने का, शरीर समझने का, शरीर पर ध्यान देकर शरीर की ओर दौड़ने का, जब तक उस मन पर हम विचार पूर्वक नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह आत्मस्थिति उपनिषद की ये बात हमारे ऊपर पूरी नहीं हो सकेगी। नारायण ब्रह्म विद्या श्रुति माता भगवती अर्थात यह जो श्लोक है वैष्णव लोग ऐसा मानते हैं, अपौरुषिक जो वेद है और अपौरुषिक वेद का जो स्वरूप है, क्योंकि वेद तो किसी पुरुष की वाणी नहीं है, और इसलिए यह जो लक्षण बताए गए हैं ये लक्षण किसी पुरुष के नहीं हो सकते और वेद अपौरुषिक हैं, इसलिए अपौरुषिक वेद अपना स्वरूप इस प्रकार इन शब्दों के इस रूप से स्पष्ट करते हैं, उजागर करते हैं, ऐसा वैष्णव लोग कहते हैं। परंतु भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि यह जो व्याप्ति ज्ञाप्ति और प्राप्ति और मुक्ति, यह जो लक्षण है सच्चित आनंद का लक्षण, ये सच्चित आनंद के लक्षण के द्वारा इस आठवें मंत्र की व्याख्या की गई। इस मंत्र की इस प्रकार व्याख्या की, यह जो लक्षण है यह तो केवल उस आत्म भाव में है, आत्मज्ञानी के हैं। और आत्मज्ञानी कैसा है? बोले वो सर्वव्यापक है।